दानियल की पुस्तक संख्या 96 भविष्यवाणी का तेहरा अनुप्रयोग अंतिम दिनों के लिए भविष्य सूचक ढांचे का अनावरण।
विलियम मिलर के भविष्यवाणी संबंधी संदेश की रूपरेखा दो उजाड़ करने वाली शक्तियां थीं, पहले पैगनवाद, उसके बाद पापसी, और फ्यूचर फॉर अमेरिका के भविष्यवाणी संबंधी संदेश की रूपरेखा तीन उजाड़ करने वाली शक्तियां हैं, पहले पैगनवाद, फिर पापसी और फिर धर्मत्यक्त प्रोटेस्टेंटवाद, परंतु अंत में ये सब एक साथ विद्यमान होंगी। मिलर की भविष्यवाणी संबंधी समझ की एक प्रमुख कुंजी ये थी कि दानियल की पुस्तक में दैनिक पैगनवाद का प्रतीक है, क्योंकि उसी ने उन दो उजाड़ करने वाली शक्तियों के बीच का संबंध स्थापित किया जो उनकी भविष्यवाणी संबंधी समझ की रूपरेखा बना। फ्यूचर फॉर अमेरिका की भविष्यवाणी संबंधी समझ की एक प्रमुख कुंजी भी यही है कि दानियल की पुस्तक में दैनिक पैगनवाद का प्रतीक है, क्योंकि पैगनवाद की ऐतिहासिक पूर्ति ने दानियल 11 के पद 40 और 41 में घटनाओं के क्रम को स्थापित किया जो फ्यूचर फॉर अमेरिका की भविष्यवाणी संबंधी समझ की रूपरेखा बन गई। जैसा कि नए प्रकाश के साथ हमेशा होता है, सोवियत संघ के पतन के साथ 1989 में जिस सत्य की मुहर खुली, उस सत्य की प्रगति का अनेक भिन्न भिन्न आवाजों ने विरोध किया। सत्य के विरुद्ध उठे प्रतिरोध ने हर बार सत्य की ओर स्पष्ट समझ उत्पन्न की। दानियल अध्याय 11 की अंतिम 6 आयतों में पाए गए सत्य के विरुद्ध उन शुरुआती विवादों में बाइबल में पाए जाने वाले कई भविष्यद्वाणी संबंधी नियमों को 1989 में दानियल की पुस्तक की मुहर खुलने पर हुई ज्ञानीति का वृद्धि का समर्थन करने वाले आवश्यक प्रमाण के रूप में पहचाना गया। वर्तमान में हम उन्हीं नियमों में से एक पर विचार कर रहे हैं जिसे हम भविष्यद्वाणी का त्रिविध अनुप्रयोग कहते हैं।
हमने शुरुआत दो त्रिविध अनुप्रयोगों पर विचार करने से की जो एक स्तर पर एक ही रेखा पर हैं, पर दूसरे स्तर पर वे भिन्न हैं। रोम की पहली दो अभिव्यक्तियां मूर्ति पूजक और पापाई आधुनिक रोम की तीसरी अभिव्यक्ति को स्थापित करती हैं। बाबुल की पहली दो अभिव्यक्तियां बाबेल और बाबुल ने आधुनिक बाबुल की तीसरी अभिव्यक्ति को स्थापित किया। आधुनिक रोम प्रकाशित वाक्य सत्ता का वो पशु है जिस पर आधुनिक बाबुल सवार होती है और जिस पर वो राज करती है। वे उतने ही भिन्न हैं जितना कि एक काउबॉय अपने घोड़े से भिन्न होता है, पर वे एक दूसरे के साथ आत्मिक व्यभिचार भी करते हैं, इसलिए उस स्तर पर वे एक हैं। भविष्यवाणी के दो और त्रिविध अनुप्रयोग हैं जिनका आपसी संबंध इसी प्रकार का है।
एलिया के पहले दो प्रकटन एलिया और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अंतिम दिनों के तीसरे एलिया को स्थापित करते हैं। इसके साथ ही वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले पहले दो दूत बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और विलियम मिलर अंतिम दिनों में वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले दूत को स्थापित करते हैं। भविष्यवाणी के तिहरत्याय अनुप्रयोग के इन दो रेखाओं के संदर्भ में पहचानने योग्य तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
पहला बिंदु यह है कि भविष्यवाणी के त्रिगुणी अनुप्रयोग की दो धाराओं के वास्तविक ऐतिहासिक प्रतिनिधि मूलतः वही ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, परंतु दोनों प्रस्तुतियों में उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से भिन्न है। दूसरा बिंदु ये पहचानना है कि भविष्यवाणी के आपस में निकटता से संबंधित इन दो त्रिगुणी अनुप्रयोगों के बीच भेद क्या है। ये भेद ये है कि एलिया अंतिम दिनों में एक बाहरी कार्य का प्रतिनिधित्व है और वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाला दूत अंतिम दिनों में एक आंतरिक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है।
ध्यान देने योग्य तीसरी बात यह है कि यीशु अल्फा और ओमेगा के रूप में तीसरे एलिया को और मार्ग तैयार करने वाले तीसरे संदेश वाहक को एक प्रथम और एक अंतिम एलिया संदेश वाहक के साथ तथा वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले प्रथम और अंतिम संदेशवाहक के साथ चिन्हित करते हैं। पहले स्वर्गदूत का एलियाह संदेशवाहक और तीसरे स्वर्गदूत का एलियाह संदेशवाहक मिलकर एलियाह की तीसरी पूर्ति बनाते हैं और मार्ग तैयार करने वाले संदेशवाहक को पहले और तीसरे दोनों स्वर्गदूतों के आंदोलनों के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
भविष्यवक्ता एलिया कर्मेल पर्वत पर हुए टकराव के माध्यम से परमेश्वर के लोगों और आधुनिक रोम के त्रिपक्षीय गठबंधन के बीच होने वाले अंतिम दिनों के टकराव का चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
माउंट कार्मेल उत्तरी इसराइल में भूमध्य सागर के तट के पास स्थित है। ये लगभग उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है और लगभग 29 मील 63 किलोमीटर तक विस्तृत एक प्रमुख पहाड़ी कटक बनाता है। मेगिद्दो की घाटी, जिसे जेजरेल घाटी भी कहा जाता है, माउंट कार्मेल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। माउंट कार्मेल और मेगिद्दो की घाटी दूरी के लिहाज से एक दूसरे की अपेक्षाकृत काफी करीब हैं। इनके बीच सीधी रेखा में हवाई दूरी लगभग 20 से 25 मील 32 से 40 किलोमीटर का फासला है। माउंट कार्मेल के पश्चिम में भूमध्य सागर है और मेगिद्दो की घाटी व जेजरेल घाटी के पूर्व में गलील सागर स्थित है, जिसे लेक तिबरियास या झील किन्नेरत भी कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य में अर्मगेदोन के युद्ध की पहचान मेगिद्दो की घाटी से कराई जाती है और प्रेरणा नहीं चाहती थी कि भविष्यवाणी के विद्यार्थी ये विश्वास करें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपना संदेश शाब्दिक अर्थों में बता रही है। इसलिए जब उसने अर्मगेदोन मेगिद्दो की पहचान अर्मगेदोन के रूप में की, तो उसने हर शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ पहाड़ होता है, ताकि ये स्पष्ट हो कि वो युद्ध उस अंतिम युद्ध का आध्यात्मिक निरूपण है जिसकी ओर अजगर, पशु और झूठा नबी संसार को ले जाते हैं। मेगिद्दो को आर्मगेदन के रूप में पहचानते हुए जॉन ने यह सुनिश्चित किया कि इसे किसी वास्तविक भौगोलिक स्थान के रूप में न समझा जाए, क्योंकि मेगिद्दो एक घाटी है और वहां कोई पर्वत नहीं है। इसके निकट ही कार्मेल पर्वत है, जहां एलिया का अहाब और इजबेल के भविष्यवक्ताओं से सामना हुआ था। अतः मेगिद्दो और कार्मेल पर्वत दोनों आर्मगेदन के अंतिम युद्ध के चित्रण है। यदि आप यरूशलेम, कार्मेल पर्वत और मेगिद्दो की घाटी को लेकर एक त्रिभुज बनाएं, तो उस त्रिभुज के दक्षिण पूर्वी कोने पर यरूशलेम होगा, उत्तर पश्चिम में कार्मेल पर्वत और उत्तर पूर्व में मेगिद्दो की घाटी। वो क्षेत्र जो प्रतीकात्मक रूप से हेंग नदीदोन के युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, दो समुद्रों से घिरा है और उत्तर का राजा, आधुनिक बाबुल की वेश्या, समुद्रों और महिमामय पवित्र पर्वत के बीच अपने अंत को प्राप्त करता है और उस समय मानव परिवीक्षा समाप्त हो जाती है।
परंतु पूरब और उत्तर से आने वाले समाचार उसे विचलित करेंगे, इसलिए वो महान क्रोध के साथ नाश करने और बहुतों का सर्वनाश करने के लिए निकल पड़ेगा, और वो अपने राजमहल के तंबुओं को समुद्रों के बीच उस महिमामय पवित्र पर्वत पर लगाएगा। तो भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसकी सहायता न करेगा, और उस समय मीकाएल, वो महान प्रधान जो तेरे लोगों के पुत्रों के लिए खड़ा रहता है, उठ खड़ा होगा, और संकट का ऐसा समय होगा जैसा किसी जाति के बनने से उस समय तक कभी नहीं हुआ, और उसी समय तेरे लोग छुड़ाए जाएंगे, हर एक जो उस पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाए। दानियल 11 कलवा तक 12:1।
एलिया का तीसरा अनुप्रयोग परमेश्वर की प्रजा का उत्तर के राजा के साथ बाहरी सामना दर्शाता है, जो अजगर, पशु और झूठे नबी के त्रिविध गठबंधन का मुखिया है और जो संसार को हर मेगिद्दोन तक ले जाता है। उस त्रिविध गठबंधन का प्रतिरूप बनने वाले एलिया के तीन शत्रु थे, अहाब जो 10 उत्तरी गोत्रों का राजा था और प्रकाशित वाक्य 17 के 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व करता था। वे बाबुल की वेश्या के साथ व्यभिचार करते हैं और एक घड़ी के लिए अपने राज्य को उस वेश्या को देने पर सहमत होते हैं, जो घड़ी रविवार कानून संकट की घड़ी है। बाबुल की वेश्या का प्रतिनिधित्व इजेबेल द्वारा किया गया था और इजेबेल के बाल के भविष्यद्वक्ता तथा उपवन के याजक झूठे नबी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रविवार के कानून का संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से शुरू होता है और तब समाप्त होगा जब मीकाएल खड़ा होगा। जब वो रविवार का कानून आएगा, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी वाणी परमेश्वर की अन्य भेड़ों को बाबुल से बाहर बुलाएगी। बाबुल से बाहर बुलाहट से लेकर अनुग्रह का समय समाप्त होने तक का समय बाबुल की वेश्या के न्याय का काल है। ये वो समय भी है जब पवित्र आत्मा बिना माप के उंडेला जाएगा। यह वही घड़ी है जिसमें 10 राजा टायर की वेश्या के साथ सहशासन करने पर सहमत होते हैं, जो अब भुलाई नहीं गई है। यह प्रकाशित वाक्य 11 के महान भूकंप की घड़ी भी है, जब 144,000 एक ध्वज के समान ऊंचे उठाए जाते हैं।
और पृथ्वी के राजा, जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और विलासिता में रहे, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे, तो उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय वो बड़ा नगर बाबुल, वो बलवान नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ पहुंचा। प्रकाशित वाक्य 18:9-10।
जिस प्रकार यूहन्ना ने शाब्दिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य को दर्शाने के लिए मेगिद्दो को मेगिद्दो का पर्वत हर कहा, उसी प्रकार बाबिलोन की वेश्या और टायर का न्याय घड़ी के दौरान तथा एक दिन में घटित होने के रूप में वर्णित किया गया है।
इस कारण उसकी विपत्तियां एक ही दिन में आएंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वो आग से पूरी तरह भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि जो प्रभु परमेश्वर उसका न्याय करता है वो शक्तिशाली है। प्रकाशित वाक्य 18 नंबर।
22 अक्टूबर 1844 के बाद भविष्य सूचक समय का अब भविष्यवाणी रूप में प्रयोग नहीं किया जाना है, और इसलिए पापाई सत्ता का न्याय एक घड़ी में और एक दिन में भी घटित होता हुआ दर्शाया गया है। उसके न्याय की घड़ी वह भविष्य सूचक अवधि है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून से लेकर अनुग्रह काल के बंद होने तक फैली है। अंतिम दिनों के एलिया पर विचार करते समय इस अवधि को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मेल पर्वत पर एलिया का संघर्ष अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा की आंतरिक परीक्षा के बाद आता है, और कलीसिया तथा संसार दोनों के लिए परीक्षा की अवधि में समान भविष्य सूचक आरंभ बिंदु और समापन बिंदु सम्मिलित है। प्रकाशित वाक्य 18 की दो आवाजें दो कलीसियाओं के लिए दो भिन्न बुलाहटों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली कलीसिया प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 का 144,000 है, और दूसरी बुलाई जाने वाली कलीसिया प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 की बड़ी भीड़ है। 144,000 के लिए बुलाहट तब दी जाती है जब पवित्र आत्मा माप कर उंडेला जा रहा होता है, और बड़ी भीड़ के लिए बुलाहट तब दी जाती है जब पवित्र आत्मा बिना माप के उंडेला जा रहा होता है।
भविष्यद्वक्ता कहता है, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास महान सामर्थ्य था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बाबुल महान गिर पड़ा है और दुष्टात्माओं का निवास स्थान बन गया है। प्रकाशित वाक्य 18:2, ये वही संदेश है जो दूसरे स्वर्गदूत ने दिया था। बाबुल गिर पड़ा है क्योंकि उसने सब जातियों को अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मदिरा पिलाई। प्रकाशित वाक्य 14:2 को वो दाख मदिरा क्या है? उसकी झूठी शिक्षाएं। उसने चौथी आज्ञा के सप्त के स्थान पर संसार को एक झूठा सप्त दे दिया है, और उसने उस झूठ को दोहराया है जो शैतान ने एदन में सबसे पहले हव्वा से कहा था, आत्मा की स्वाभाविक अमरता। इसी प्रकार की अनेक भ्रांतियां उसने दूर दूर तक फैला दी हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को सिद्धांत के रूप में सिखाते हुए मत्ती 15:9। जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ की, तब उन्होंने मंदिर को उसके धर्मद्रोही अपवित्रीकरण से शुद्ध किया। उनकी सेवकाई के अंतिम कार्यों में से एक मंदिर का दूसरी बार शुद्धिकरण था। इसी प्रकार संसार को चेतावनी देने के अंतिम कार्य में कलीसियाओं के लिए दो स्पष्ट बुलाहटें दी जाती हैं। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ये है, बाबुल गिर गया वो महान नगर, क्योंकि उसने अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु सब जातियों को पिला दी। प्रकाशित वाक्य 14:8। और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की ऊंची पुकार में स्वर्ग से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, हे मेरे लोगों, इससे बाहर निकल आओ कि तुम उसके पापों में सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से कुछ तुम पर न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्मों को स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य 18:4-5। चयनित संदेश पुस्तक 2 100।
शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की पूर्ति में तब उतरा जब 11 सितंबर आसपास तार बोल रखे न्यूयॉर्क सिटी की विशाल इमारतें ढा दी गईं। तब उसने ऊंचे स्वर में जोर से पुकार कर कहा, बाबुल महान गिर गया और दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान बन गया। और फिर पद 4 में एक और आवाज स्वर्ग से सुनाई देती है जो कहती है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। वे दोनों आवाजें कलीसियाओं के लिए किए गए दो भिन्न आह्वान हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर की दो विशिष्ट कलीसियाएं 144,000
और एक बड़ी भीड़ के रूप में पहचानी जाती है।
144,000 के लिए परीक्षण काल तीसरी विपत्ति के इस्लाम से शुरू होता है, जिसे यशायाह पूर्वी पवन का दिन के रूप में पहचानते हैं। वो परीक्षण काल संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून और पशु की छाप के प्रवर्तन के साथ समाप्त होता है। पशु उत्तर का नकली राजा है, जो आधुनिक बाबुल का प्रमुख है। दानियल अध्याय 7 में बाबुल सिंह है और यहूदा का जांघ्या उल्लंघन करने वाला नबी, जो लाओदीकियाई एडवेंटिज्म का प्रतिनिधित्व करता है, उस काल में मरता है जो इस्लाम के गधे 11 सितंबर 2001 से शुरू होकर सिंह आधुनिक बाबुल पर समाप्त होता है।
जिस काल को लाओदीकीय एडवेंटिज्म के आज्ञा भंगकारी भविष्यद्वक्ता की कब्र के रूप में निरूपित किया गया है, उस दौरान अंतिम वर्षा मापकर बांटी जाती है, क्योंकि एक विशिष्ट बुलाहट 144,000 की कलीसिया को दी जाती है। जब वो अवधि समाप्त होती है, महान भूकंप की घड़ी पर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के लानून का प्रतिनिधित्व करती है, तब प्रकाशित वाक्य 18 की दूसरी वाणी का काल पशु के चिन्ह, जो उत्तरी राजा का चिन्ह है, के लागू होने के साथ आ पहुंचता है। उसी समय तीसरी विपत्ति का इस्लाम एक धर्मत्यागी संसार पर क्रमशः तीव्र होता न्याय लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महान भीड़ की कलीसिया के लिए उस दूसरी विशिष्ट बुलाहट के दौरान 144,000 के ध्वज द्वारा उद्घोषित संदेश उत्तरी राजा के चिन्ह और तीसरी विपत्ति के इस्लाम की भूमिका, जिसे पूर्व के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, की पहचान करता है।
दानियल अध्याय कला के पद 44 में पापाई सत्ता को क्रोधित करने वाला संदेश और अंतिम पापाई रक्तपात की शुरुआत कराने वाला संदेश पूर्व से समाचार इस्लाम और उत्तर पशु का चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस काल में जैसे पिछले काल में पूर्वी पवन के रूप में इस्लाम, उस काल की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्याय लाता है, और वो काल तब समाप्त होता है जब उत्तर का राजा समुद्रों और महिमामय पवित्र पर्वत के बीच मेगिद्दो की तराय और कर्मेल पर्वत पर अपने अंत को पहुंच जाता है।
आधुनिक बाबुल के लिए न्याय काल, जो उसकी मृत्युशैया कब्र का प्रतीक है, पूर्व के प्रतीक से आरंभ होकर उत्तर के प्रतीक पर समाप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे अवज्ञाकारी लाओदियाई भविष्यद्वक्ता के लिए मृत्युशैया का काल कलीसियाओं को दी गई पहली स्पष्ट पुकार पर समाप्त हुआ। वो कब्र मृत्युशैया, जिसमें बेतेल का झूठा भविष्यद्वक्ता और यहूदा का अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता दोनों दफन हैं, गधे और सह के बीच दर्शाई गई है।
एलिया परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका सामना एक तीन तरफा शत्रु से था, जिसका प्रतिनिधित्व अहाब, इजेबेल और इजेबेल के भविष्यवक्ताओं ने किया था। थुआतीरा की चौथी कलीसिया में पापाई शक्ति का प्रतीक इजेबेल है और कर्मेल पर उसके भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व बाल के भविष्यवक्ताओं और उपवन के याजकों ने किया।
बाल एक पुरुष देवता का प्रतिनिधित्व करता है और उपवन के याजक अश्तोरेत एक स्त्री देवी का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार इजेबेल के झूठे भविष्यवक्ता स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बने थे, जो कलीसिया और राज्य के संयोग का प्रतीक है, जिसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पशु की प्रतिमा द्वारा दर्शाया गया है।
सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ही में पशु की प्रतिमा स्थापित करता है और उसके बाद संसार में, और त्रिविध संघ का झूठा भविष्यद्वक्ता भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अहाब 10 गोत्रों का राजा प्रकाशित वाक्य 17 के 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात अजगर, और इजेबेल पशु है। एलिया आधुनिक बाबेल के त्रिविध संघ के साथ कर्मेल पर्वत पर आमने सामने था, जहां बाबेल की वेश्या का अंत होता है और सहायता करने वाला कोई नहीं होता। एलिया का त्रिगुण अनुप्रयोग उस बाहरी टकराव का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों के विरुद्ध लाया जाता है, और एलिया उस नबी का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन तीन शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष टकराव में है।
एलिया की कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व वर्षा है, जो टकराव के इतिहास में उंडेली जाने वाली अंतिम वर्षा का प्रतीक है। करमेल पर्वत पर टकराव से पहले एलिया ने साफ कहा था कि जब तक वो न बोले तब तक वर्षा नहीं होगी। ईजबेल के न्याय की घड़ी से पहले का काल वही है जिसका प्रतिनिधित्व कलीसियाओं को दी गई पहली विशिष्ट आवाज करती है। वो आवाज 11 सितंबर 2001 को आई और उस अवधि में वर्षा केवल मापी जा रही थी। उसी अवधि में हबकूक के विवाद से जुड़े अंतिम वर्षा के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी संदेश भी थे। एक तम्मूज के लिए रोने का नकली संदेश था जो शांति और सुरक्षा के संदेश का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरा इस्लाम के तीसरे हाय का सच्चा संदेश था। सच्चा अंतिम वर्षा संदेश तीसरी विपत्ति के रूप में इस्लाम की भूमिका पर आधारित था। वह संदेश एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ जो फ्यूचर फॉर अमेरिका था, और दोनों संदेश सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे। अंततः इतिहास ने सच्चे संदेश की सत्यता की पुष्टि की, और ऐसे समय में शांति और सुरक्षा संदेश की मूर्खता की भी पुष्टि की।
दानियेल और योहन्ना की भविष्यवाणियां समझी जानी चाहिए। वे एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। वे संसार को ऐसे सत्य देती हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। ये भविष्यवाणियां संसार में गवाही देने के लिए हैं। इन अंतिम दिनों में अपनी पूर्ति द्वारा वे स्वयं अपनी व्याख्या कर देंगी। क्रेस कलेक्शन 10 से।
एलिया के तीसरे अनुप्रयोग में उसकी पहली पूर्ति की पुष्टि दूसरे एलिया द्वारा होती है, जिन्हें यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के रूप में पहचाना था। साथ मिलकर वे दो साक्षी तीसरे एलिया को स्थापित करते हैं।
और जब वे चले गए तब यीशु ने भीड़ से यूहन्ना के विषय में कहना आरंभ किया, तुम जंगल में देखने के लिए क्या निकल गए थे? क्या हवा से हिलता हुआ सरकंडा? पर तुम क्या देखने निकले थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो लोग कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजाओं के महलों में होते हैं। पर तुम क्या देखने निकले थे? क्या एक भविष्यद्वक्ता? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, और वो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर है, क्योंकि यही वो है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं तेरे आगे अपना दूत भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, स्त्रियों से जन्मे हुए में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं उठा, तो भी स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वो उससे बड़ा है। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के दिनों से अब तक स्वर्ग का राज्य बल से लिया जाता है, और बलवंत लोग उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था ने यूहन्ना तक भविष्यवाणी की। और यदि तुम इसे स्वीकार करना चाहो तो ये वही एलिया है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हों वो सुने। मत्ती 11:7-15।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
आज एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा और सामर्थ्य में परमेश्वर द्वारा नियुक्त दूत न्याय के लिए ठहराए गए इस संसार का ध्यान अनुग्रह काल के समापन की घड़ियों तथा राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में यीशु मसीह के प्रकट होने से संबंधित शीघ्र होने वाली गंभीर घटनाओं की ओर आकर्षित कर रहे हैं। शीघ्र ही प्रत्येक मनुष्य का शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार न्याय होगा। परमेश्वर के न्याय की घड़ी आ पहुंची है, और पृथ्वी पर उसकी कलीसिया के सदस्यों पर ये गंभीर जिम्मेदारी टिकी है कि वे उन लोगों को चेतावनी दें जो मानो अनंत विनाश की कगार पर खड़े हैं। इस व्यापक संसार में जो कोई ध्यान देगा हर मनुष्य के सामने चल रहे महान संघर्ष में दांव पर लगे सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, वे सिद्धांत जिन पर समस्त मानव जाति की नियति निर्भर करती है। मनुष्यों की संतान के लिए परीक्षा काल की इन अंतिम दिनों में, जब प्रत्येक आत्मा का भाग्य बहुत शीघ्र ही सदा के लिए निर्धारित होने वाला है, आकाश और पृथ्वी का प्रभु अपेक्षा करता है कि उसकी कलीसिया जैसा पहले कभी नहीं वैसे जागकर कार्य में प्रवृत्त हो। जो अनमोल सत्य के ज्ञान के द्वारा मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं उन्हें प्रभु यीशु अपने चुने हुए मानते हैं, और वे पृथ्वी के मुख पर अन्य सभी लोगों से बढ़कर कृपा पाए हुए हैं, और वो उनसे अपेक्षा करता है कि वे उसकी स्तुतियां प्रकट करें जिसने उन्हें अंधकार में से बुलाकर अद्भुत ज्योति में लाया है। जो आशीषें इतनी उदारता से दी गई हैं उन्हें दूसरों तक पहुंचाया जाना है। उद्धार का सुसमाचार हर एक जाति, कुल, भाषा और प्रजा तक पहुंचना है। प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं के दर्शनों में महिमा के प्रभु को अपने दूसरे आगमन से पहले के अंधकार और अविश्वास के दिनों में अपनी कलीसिया पर विशेष प्रकाश प्रदान करते हुए दिखाया गया था। धर्म का सूर्य होकर वह अपनी कलीसिया पर अपने पंखों में चंगाई लिए हुए उदय होने वाला था। मलाकी 4:2 और प्रत्येक सच्चे शिष्य से जीवन, साहस, सहायता और सच्ची चंगाई का प्रभाव फैलना था। मसीह का आगमन इस पृथ्वी के इतिहास के सबसे अंधकारमय काल में होगा। नूह और लूत के दिन उस दशा का चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें मनुष्य के पुत्र के आने से ठीक पहले संसार होगा। पवित्र शास्त्र इस समय की ओर संकेत करते हुए घोषणा करता है कि शैतान सारी शक्ति के साथ और अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ काम करेगा। द्वितीय थिसलुनिकियों 2:9-10। इन अंतिम दिनों में तेजी से बढ़ते अंधकार असंख्य त्रुटियों, विधर्मों और भ्रमों द्वारा उसका काम स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। शैतान न केवल संसार को बंदी बना रहा है, परंतु उसके छल कपट हमारे प्रभु यीशु मसीह की कहलाने वाली कलीसियाओं में भी खमीर की तरह फैल रहे हैं। महान धर्मत्याग आधी रात जितने गहरे अंधकार में विकसित हो जाएगा, परमेश्वर के लोगों के लिए वो परीक्षा की रात, रोने की रात, सत्य के कारण उत्पीड़न की रात होगी। परंतु उसी अंधकार की रात से परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। भविष्यद्वक्ता और राजा 770 साप्थरा।